और अंत में रति होती है। रति माने भगवान के चरणों में वह भाव जो कि प्रेम के रूप में सहजी परिणत हो जाता है, वो अवस्था को आती है और उसके बाद में प्रेमा भक्ति हो जाती है। भक्त्या कहा, भक्ति, भक्ति का तात्पर्य भक्त्या संजाता भक्ति, भक्ति से ही भक्ति होती है। श्रद्धा भी भक्ति है, रति भी भक्ति है और भक्ति भी भक्ति है। यहाँ पर भक्ति माने प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। नारायण के चरणों में प्रेमा भक्ति, रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमा भक्ति, द्वारकाधीश के चरणों में भी प्रेमा भक्ति होगी, कृष्ण के चरणों में भी प्रेमा भक्ति। अब प्रेमा भक्ति होने पर कृष्ण के चरणों में भी चार प्रकार की होती है, मधुर में भी हजारों प्रकार की होती है। एक प्रकार की मधुर हजारों प्रकार की होती है। अतः ध्रुवेन अपि चतुर्थ स्कंध में ध्रुव जी ने भी कहा है, भक्ति इनभूत प्रवाहतां प्रवाहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महतां अमलाशयानां येना अंजसो उल्मनं उरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भगवद गुण कथा मृत पानमत्तः। बहुत ही सुंदर ये भी श्लोक है। ये ध्रुव महाराज जी ने जब ध्रुव जी पिता के राज्य के लिए या उससे भी बड़े राज्य के लिए श्री हरि का आश्रय लेकर के भजन करने लगे और 6 महीने में भगवान को पाया, तो भगवान ने देखा कि इसके हृदय में कुछ वासनाएं, इसलिए वासना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बिना मांगे ही वर दे दिया। 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी मंडल का राज्य सुख से भोग और ये कह करके झट अंतर ध्यान हो, मौका नहीं दिया कुछ कहने का। और जब प्रभु जब चले गए अंतर ध्यान हो गए तो ये विलाप करते रहे, आहा कांच के लिए स्थाना विलासी तपस्वी
स्थितो वहम तां प्राप्तवान देवमुनिन्द्र गुज्जम काचम विचिन्नं चिरं प्राप्तिता तस्मि वरं न जाचे।
मैं कांच की खोज में था, कांच टूटा हुआ खोज रहा था, बचपन में बच्चे सब देखा धनी घरों के कूड़े दानी में खोज रहे हैं, कोई चीज मिल गया पैसा या कुछ भी रबर के कुछ टूटे टूटे कुछ भी खिलौने, धनी घरों खुलकर में रहते हैं देहातों में विशेषकर लड़के खोजते फिरते हैं, तो खोज रहे थे उसी में कोई हीरा का टुकड़ा मिल गया। ऐसे ही ये कह रहे हैं, मैंने राज्य के लोग से कुछ अपना अपने को अपमानित समझ करके पिता के द्वारा रोष पूर्वक मैं भजन करने के लिए हरि के लिए। इनका भजन कैसा था? कुछ राजसी था, इसी को राजसी सकाम पर कुछ भजन भगवान का होता है वो तामसिक होता है। तामसिक माने कैसे?
किसी को मारा नहीं चाहता, नहीं
किसी को मारना चाहता नहीं। और सात्विकी कैसे होता है? कोई सात्विकी वस्तु पाने के लिए। ये इनका राजसी था, कामना भी थी, भजन करने के लिए गए और 6 महीने में निराहार रहकर भगवान का दर्शन पाया। तो भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तब वो ये श्लोक कर रहे हैं, भक्ति मुहूर्त प्रभक्ता कई में प्रसन्न, मानो भगवान इसकी स्फूर्ति में आ गए, दर्शन दे दिए। जब उन्होंने विलाप करने लगे तो भगवान ने कहा, अच्छा भर मांगो, अभी तो 36,000 वर्ष ये भोगेगा तू, और अच्छी तरह से भोग करने के बाद में तब तुम्हारी इच्छाएं परिपूर्ण, जब शांति और इससे विरक्ति हो जाएगी बोलते बोलते, तब तुम हमारे स्थान में पहुंच जाओगे। तो यही ये कह रहे हैं, भक्ति मोह प्रभुता प्रभावता, जैसे कोई धारा प्रवाहित होती है, भक्ति की धारा हमारे अंदर में प्रवाहित होती है। स्पष्ट रूप से कौन रस का कौन बात ये इसको कहो अभी शांत जाता इससे अधिक नहीं। ये भक्ति तुम्हारे प्रति हमारी प्रवाहित हो। मैं प्रसन्न हूं आपके जो जो कथाएं हैं भक्ति है हमारे हृदय में आपके प्रसंग वाली जो बातें हैं वो हमारे हृदय में प्रवाहित हों। भूयाद अनंत महता अमलाशयाना हे आनंद। यहां पर कृष्ण नहीं संबोधन और कोई संबोधन नहीं अनंत भगवान को अनंत करके ही उनका अनंत अध्याय वस्तु जी के प्रति कह रहे हैं। हे आनंद जो सब अमल आशय व्यक्ति अमल है आशय हृदय जिनका अमल आशय जिनका हृदय शांत निर्मल है। किसका हृदय शांत है? भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम भक्तों के हृदय को छोड़ करके और किसी का हृदय शांत नहीं हो सकता निर्मल नहीं हो सकता। किंतु भक्त अनर्थ मुक्त होना चाहिए। अभी अपितेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाति इनका नहीं होता। भज रहे हैं इनको भी धार्मिक ही समझो निंदा मत करो जो अत्यंत दुराचारी भी हैं किंतु अनन्य रूप से भजन करने लग गए हैं इनको साधु भी क्यों इनका आश्रय बड़ा निर्मल क्या है अनन्य भक्ति भगवान के प्रति पिंगा तो साथी नक्षत्र का ही पानी पीऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। हमारी कामनाएं हैं वो कृष्ण की पूरा कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। दुराचारी भी हूं तो कृष्ण ही हमारे सर्वस्व ऐसा मान करके जो भजन करता है क्षिप्रम भवति
धर्मात्मा
शीघ्र ही वो परम धर्मात्मा हो जाता है। ये कामनाएं समूह ध्वंस हो जाती है और वो भगवान होता है। इसलिए ये कहते हैं जितने भी अमलाशय व्यक्ति जिनका हृदय पूर्ण रूप से शांत और निर्मल है ऐसे महापुरुष आपके प्रति सतत रूप में नित्य निरंतर भक्ति करते हैं। नित्य निरंतर माने दिन भर करेंगे कि नहीं? अरे सोएंगे तो खाएंगे तो स्नान तो करेंगे कुछ विश्राम भी तो करेंगे तो निरंतर कैसे हुआ? नहीं इन सब कामों में निरंतर उनकी भक्ति होती रहेगी महापुरुषों का। जैसे कोई कामी व्यक्ति अपने किसी काम के लिए खाता हुआ सोता हुआ चलता हुआ पीता हुआ चंदन करता है ये भी ऐसे ही करता है सब समय उठते बैठते सोते खाते चलते फिरते बस वही चिंता रहेगी। आपकी कथा के श्रवण के लिए उनका संग करते हैं प्रतिष्ठित किनका महाभागवतों का। यदि कहते हैं अमलाशय व्यक्तियों का तो आपने कुछ भगवान से मोक्ष की प्रार्थना क्यों नहीं की? तो कह रहे हैं भक्तु का अनुसंग फल है मोक्ष उपस्थित ये हो जाता तो भी भक्त लोग उसके तरफ में दृष्टिपात नहीं करते मोक्ष उत्पन्न हो जाने पर भी। इसलिए ध्रुव महाशय की प्रार्थना कर रहे हैं महतों के संग में आपकी गुणावलियां भगवान की गुणावली को भक्त के गुणावली को माइक मत समझो। एक आदमी संसारिक आदमी संसारिक लोगों की बातें करता है अरे वो तो बहुत सी स्त्रियों को लेकर के रहता है एक हुआ और कृष्ण बहुत सी गोपियों को लेकर के रह ये दोनों देखने में एक सामने है किंतु एक है कहां निर्मल शुद्ध हेम स्वर्ण और कहां एक मुर्जा लोहा एक है काम एक है ऐसे महत संगों में वो जाता है और वहीं पर भगवान की लीला कथाओं का पान करके मत होकर के अन्यासिनी उरुव्यसन उरुव्यसन माने संसारिक आसक्ति जिनमें केवल दुखी दुख पाता है ऐसे व्यसनों से व्यसन माने होता है चाट माने क्या लोगों की ऐसी लग जाती है उसमें व्यसन आसक्ति चाटने में जैसे लोगों की आसक्ति बनी, यहाँ पर चाट बिक रहा होगा उसके लिए भीड़ लगी जाएगी, दुकान में बड़ी भीड़ रहती है, ऐसे ही ये संसार दुष्कर है। उनके उत्तीर्ण होने के लिए जिस प्रकार से मधुपान आसक्त, मधुपान में आसक्त व्यक्ति मधु रस का ही आस्वादन करते हैं, मधु माने मधु का, मधु ये नहीं होता है कि हम हमारी शीत दूर हो जाए, मधु गर्म होता है, तो मधुपान करने से शरीर में मत्तता आती है और ठंडापन दूर हो जाता है, तो ये ठंडापन को दूर, शीत को दूर करने के लिए नहीं किया कि वो मीठा खूब था ना, इसलिए इसलिए संसार का दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं वो बहुत मधुर स्वभाव से, इसलिए भगवान की कथा पूर्व व्यसन के साथ में असत अत्यंत आसक्ति से भगवान की कथाओं का पान करते हैं, उसे मोक्ष तो अपने आप हो जाता है और भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, भगवत भक्ति सुधा का पान करते करते निरंतर भगवत भक्ति सुधा प्रमुख हो जाती है, इसलिए मोक्ष को भक्ति का अवंतर फल समझना चाहिए, अर्थात वो स्वतः ही सिद्ध शुभ हो जाती है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं बंसा। बृहत भगवतामृत के दो उपाख्यानों को बताया, अब उसका निष्कर्ष बताया। जैसे भागवत में दशम स्कंध की कथा वर्णन करने के बाद में व्यास देव ने अथवा सुखदेव गोस्वामी जी ने कैसे उस चीज की प्राप्ति हो सकती है जिसके पहले स्तर से अंतिम स्तर तक की बातें एकादशी स्कंध, कैसे वो लाभ होगा, उसके प्रति जितनी भी भक्ति है वैकुंठा भक्ति से आरंभ कर ऐश्वर्य भक्ति से लेकर ब्रज भक्ति तक लेकर ये जो कुछ भी है कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए प्रारंभ से जितने भी साधन हो सकते हैं और अंत तक जो हो सकते हैं सबका उसी में समावेश करके कर ऐसे बृहद भगवतामृत में दो उपाख्यान, पहले में नारद जी का वो भक्तों को देखते हुए सबसे अधिक भक्त कौन उन्नत है ये देखते हुए एकदम द्वारका करते हैं, और इधर में गोप कुमार जी अपनी गाथा में भगवत तत्व के अनुसार में भगवान का सबसे बड़ा तत्व कौन है और उसको वर्णन करते हुए भक्तों का चरित्र वर्णन किया, भगवान से भक्तों का चरित्र और पहले में भक्तों से भगवान का चरित्र, ये सब बहुत ही दुर्लभ चीजें दोनों में बतलाई, दोनों एक ही, दोनों का पहला खंड का उपसंहार और दूसरे खंड का उपसंहार गोपी प्रेम से समाप्त किया, गोपी प्रेम ही सबसे सर्वसाध्य से मनी बता। अब यहाँ पर सप्तम अध्याय में बृहद भगवतामृत के दूसरे खंड में कैसे इस चीज की प्राप्ति होगी अब उसके लिए महत्संग के संबंध में, बिना महत्संग के कुछ भी नहीं, बिना महत्संग के हरिनाम भी नहीं होगा, बिना महत्संग के श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाठ सेवन भक्ति का कोई भी अंग बिना साधु संग के कभी नहीं हो सकता। भगवान सर्वोपरि है, बात ठीक, भगवान का नाम स्वयं भगवान सर्वोपरि है, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, किंतु भक्तों के अनुगत्य में यदि हरि नाम नहीं होगा तो वो सब ऐसी ये चीजें नहीं हो सकती, प्रेम, वैकुंठीय प्रेम, या यहां तक कि मुक्ति भी नहीं दे सकती। केवल संसारिक भावनाओं को पूर्ण करते भक्तों के संग में जैसा जैसा भक्त होगा भक्ति का भी उत्कर्ष भक्तों के प्रभाव से होगा। भक्त भी कम नहीं है, भगवान के समान ही भगवान के सब गुण पूर्ण है, इसलिए बिना भगवत भक्ति के कर्मों का फल भी नहीं मिलता है तो भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। कोई है ऐसा भया भक्ति बहुत दूर, तुम लोगों को जरूरत ही नहीं चेतन। संस्कार संसार भी वो हरिनाम भी करेगा कभी नहीं होगा। कति यदि कोई एकांतिक रूप में हरिनाम यदि ग्रहण करे तो आप भाई भक्त ही नहीं कर समझ में, तो एकांतिक रूप में वो सब नाम का आश्रय का क्या करेगा, उसके बिना संग के नाम के महात्म में उसकी रुचि नहीं होगी, वो करेगा क्यों? इसलिए महत्व संग वो सब में आधार में जरूर रहना, और जैसा जिसका संग होगा भगवान का नाम भी ऐसे ही गौण या मुख्य नाम में उनकी रुचि होगी। गौण भक्त होगा तो गौण नाम में आएगा, और मुख्य भक्त होगा तो मुख्य नाम की तरफ में जाएगा। मुख्य नाम में भी जैसे जैसे भक्त का विचार है वैसे वैसे ही नाम करने से वैसे वैसे ही फल। इसलिए दोनों को एक साथ में बतलाया, तन्नाम रूप चैतादि सुकृत नाम क्रमीण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल नएव इखिनाम उत्पदे सुसारी। सर्वत्र एक ही बात, इसलिए ये इसमें महत संग को बतला रहे। महत में गुरु वैष्णव सभी आ जाएंगे। कल तक उन्होंने उन्होंने बतलाया संगत जसंस्कृत हेतु असत्य विहित हो दिया। यदि अज्ञान पूर्वक भी असत व्यक्तियों का संग हो तो उसका फल जब वैसा होता है वही कार्य व्यवहार यदि साधु पुरुषों के साथ में किया जाए तो उसको निसंग कहते हैं, और निसंग का अर्थ यहाँ पर अहेतु की भक्ति से लिया है। फिर मैत्रेय ऋषि विदुर ने भी ऐसा कहा है, जस्य वह भगवत कुटस्थो मधुर रति राशु भवे तीव्र पादयो व्यसना। इसमें भी उन्होंने ऐसा ही सतान प्रसंगमो विद्य संविदो इस श्लोक की भी व्याख्या कर भक्ति मोह प्रमतां कैवे प्रसज्य प्रसंगो भूयाद आनंद भातां अमलाशयान जीना अंतिशो उर्वनम उर्व्यसनम भवाप्तिन्नेस्य भगवत गुण तथा मृतपान। यहाँ तक हम लोगों ने इस श्लोक में भक्ति के लिए सनातन गोस्वामी विचार कर रहे हैं। ये ध्रुव महाराज ने ध्रुव जी पहले कर्मी थे बचपन में ही, और पिता के बागबाणों से अपनी माता के विमाता के बागबाणों से छिद्र होकर के, और तब वो वन में चले गए भगवान की आराधना की, और आराधना करने के बाद में भगवान को प्राप्त हुए। 36,000 वर्ष का निष्पंतक राज्य मिल गया। तब उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में संसार की असारता राज्य की असारता को उन्होंने समझा, और समझ करके अब वो बतला रहे हैं, हे अनंत देव भक्ति मुहूर्त प्रवतां प्रवातां कोई मेघ प्रसंगो। आपकी जो भक्ति है हमारे हृदय में नदी की धारा की तरफ निरंतर बहती रहे, निरंतर प्रवाहतां नित्य कैसी तुम्हारा जो प्रसंग है वो कहाँ मिलेगा? भक्तों के संग उनके प्रसंगों को सुन सुन करके भक्ति हमारी प्रवाहित होती रहे। उनसे अमल आशाया, अमल आशाया, अमल जिनका हृदय है केवल भक्तों का ही हृदय पवित्र हो, इसके अतिरिक्त किसी का नहीं हो। कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी। एक बात किंतु और अच्छी तरह से समझ लो है, संसार में सत्संग दुर्लभ, इसके द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु जिसने इन भक्तों का अनादर किया, अवज्ञा किया भक्तों का, तो उसकी गति क्या होगी? बड़ी दुर्लभ गति होगी उसकी। दुर्लभ माने जो नारकीय व्यक्ति हैं, नरक का कार्य करने पर भी जो नहीं पाते, वो उनको गति मिलेगी किससे? यदि उन भक्तों का निरादर किया, अवज्ञा किया, निंदा किया, हंती नंदती
कोई
देशति
वैष्णवान अभिनंदति,
वैष्णव का जो अभिनंदन नहीं करता,
उद्धते जाति
नो हर्षं, जाति नो हर्षं प्रसन्न नहीं होता, उनकी ऐसे ही दुर्गति है। निश्चित रूप में जल्दी से या देर होगा इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण का वह प्रेम जो गोपियों के लिए, वो प्रेम भी प्राप्ति हो सकती है इन संगों का सेवन करने से। और यदि इसका ठीक विपरीत काम किया तो वही उनके मृत्यु का कारण भी बच जाएगा। इसमें दोनों चीजों को दिखलाएंगे, अभी अनुकूल रूप में ले रहे हैं, फिर प्रतिकूल भी विचार करेंगे। हे अनंत, जितने भी अमलाशय हैं, विशुद्ध चित्त के महापुरुष, आपके प्रति सतत आपके प्रसंगों के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से आपके प्रति जो भक्ति किया करते हैं, आपकी हरि कथा को सुनने के लिए हमारा प्राकृष्ट संग, उन्हीं लोगों के साथ में हमारा संग, उनकी नित्य निरंतर उनके मुख से हम कथा सुनते रहे। यहाँ तक इन्होंने कहा है प्रहलाद महाराज ने कहा, जेश जेश उप्रजामने, जितनी भी जोनिया है देश देश ब्रजामना, देश देश अचला
भक्ति
भक्ति अच्युतास्त सदा कोई। और इसके बाद का श्लोक में जहां जहां हमारा जन्म की पतंग ले ली, किंतु आपके भक्तों का संग्रह और उनके मुख से हरि कथा का निरंतर मैं श्रवण किया। कहते हैं कि जैसे आपने भक्तों का संग मांगा, जेनजसो महताम अमलाशयानाम भूयात अनंत प्रसंगो, प्रकृष्ट रूप में उनके ये संग की प्राप्ति हो, किनके? अमलाशय जो भक्त हैं। क्यों? उसमें जो हरि कथा होती है उसमें हृदय बहुत जल्दी से पवित्र हो जाता है और भगवान के प्रति भक्ति होती है अनंत देव के प्रति, जिससे अंजसा शीघ्र ही उल्मानन पूर्व व्यसन, आग जो लगी है कैसे व्यसनों के द्वारा, संसारिक आसक्ति के द्वारा, वो तो अपने आप बुझ जाती है। आग, आग माने जीवन मरण का चक्कर, ये जो आग है ये आनुषंगिक रूप से भक्तों के शब्द से ये दूर हो जाती है और प्रकृष्ट संग से अनुकूल रूप में भगवान के चरणों में अहत की भक्ति हो जाती है। इसलिए ध्रुव महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महासंघ में आपकी हरि कथा का, गुण कथा का अमृत पान करके मत होने पर अनायास ही व्यसन अर्थात दुखपूर्ण जो संसार है इससे आदमी से उत्तरण हो जाता है। जैसे हरि कथा एक मधु के समान, आदमी उसका स्वाद लेने के लिए मधु पान करता है, किंतु साथ ही साथ में गर्मी के दिनों में पान करने से उसमें गर्मी आ जाती है शरीर। मनुष्य गर्म होने के लिए, ठंड से बचने के लिए मधु का पान नहीं करता, वो तो पान करता है स्वाद के लिए, किंतु हो जाता है ये स्वाद भी उसको मिल जाता है। ऐसे ही भगवान की कथाओं के सुनने से, वो तो मधुर है, उससे संसार की पूर्व जो व्यसन है दुख है वो अपने आप मौन रूप में दूर हो जाता है। इसलिए भक्ति का सुधा पान भी यहाँ पर मुख्य है। इसलिए मोक्ष अमंतर फल अपने आप आ जाने की भक्त लोग उसको ग्रहण नहीं करते। चतुर्थ स्कंद में शंकर जी ने भी कहा है, कुलये न स्वर्गम न अपना ध्रुवम भगवत संगी संघर्ष मता नाम कृपा भगवत
भक्तों का संग बड़ा ही दुर्लभ
है। यहाँ तक कि जिस प्रकार से सिर में क्या होते हैं कीड़े,
जुआ,
वो किसी भक्त के जटा में या सिर में यदि पड़ जाए तो साधु संग थोड़े उन्होंने किया, वैष्णव के साथ में रात भर पलंग में खटमल लोग उनका संग करते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, कभी वो संग संग नहीं, साधु संग में रहने से नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं भगवत भक्त, भगवत भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, मिलने पर भी हम उसको नहीं समझ पाते और जो लाभ उठाना चाहिए वो नहीं उठाते। इसके लिए चेष्टा करनी हो कि वैष्णव के साथ में हम रहें तो अंत कुछ न कुछ आंतरिक रूप में उनके बातों का कुछ संबल उठा सके, लाभ उठा सके। जो संग है दुर्लभ उनका, उसके सही क्षण भर का यदि संग, आधे क्षण का भी क्षणार्थन है, एक क्षण का आधा पलक लगती है उसका आधा भाग यदि वैष्णव का संग हो जाए तो उसकी तुलना के साथ में और विश्व के संसार के ज्ञान जप तप इत्यादि किसी का भी संग उसकी तुलना में नहीं हो सकता है। राजा राज इत्यादि उसके सहित में तुलना प्राप्त होंगे तो बात ही क्या, ना कि तुलय स्वर्गम न अपना भव, मुक्ति भी उनके बराबर नहीं हो सकती है। भगवत संगी संघर्ष मर्ता नाम, और मर्त के जो जितने भी विषय हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, अपवर्ग तक नहीं होगा उसके तुलना में। अथान अंघ्रे स्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर बहिर स्नान विद्युत अति अति अपना नाम भूतेषु अनुक्रोश क्रोशुषु अनुशीलनम स्यात् संग मोह अनुग्रह एवं अस्त। आपके भक्तों की चरण रेणु जिस प्रकार से समस्त पापों को हरण कर लेती है, ऐसे अघासुर घातक जो कृष्ण है उनके जुगल चरणों में जो चिन्हों से जो सुशोभित भक्तों के मुख भी गलित आपका जो जस है, जो आपके चरण कमलों के जो भक्त हैं उनके मुख से निकली हुई जो हरि कथा है, पहले उनकी चरण रज और उनके मुख से निकली हुई वाणी हरि कथा में अवगाहन करके गंगा जल पान करके अथवा गोपिकाओं के जल अवगाहन संबंधी जमुना घाट में स्नान करके यथाक्रम से अंतर को बाह्य स्नान से जहां दार का कलमस दूर हुआ है अंतर कर रहे हैं वो महात्मा लोग किनके मुख से हरि कथा सुनने से होगा उसके लिए विशेषण दे रहे हैं कि सब समय अभासुर को मारने वाले जो कृष्ण चंद्र हैं उनके चरणों से सुशोभित भक्तों के मुख से विगलित हरि कथा यदि सुने जाए ऐसे भक्त हों अथवा आपके जस और कीर्ति में अवगाहन करने वाले कोई ऐसे भक्त हों और तीर्थ में यहाँ गंगा जल से भी कह रहे हैं गोपिकाएं जिस घाट पर जमुना जी में जल भरने जाती थी वहां पर स्नान करने उन लीलाओं के स्मरण में जोड़ा ऐसे लीलाओं का स्मरण करने वाले जिनका अंतर और बाहर दोनों पवित्र हो चुका है ऐसे भक्तों के मुख से हरि कथा सुन से जितनी कोटि कोटि जन्मों की वासनाएं ध्वंस हो जाती हैं। बाहर स्नान से अर्थात नरक इत्यादि के लिए जितने भी पाप कर्म हैं वो सब भी धौत हो गए हैं अमर आशय भी उसको कहते हैं। ऐसे वर्षों का संग करने के बराबर और कोई ये सब जो बतलाया अपवर्ग इत्यादि नहीं। इसी के लिए किसी पुराणों में ऐसा लिखा गया संग कितनी बड़ी भारी महिमा है वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र का उपाख्यान भी। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की काम धेनु को देखकर कुछ उनको लोभ हुआ लेना चाहे किंतु काम धेनु वहां गई नहीं। इसके बाद में सोचा कि ये ब्रह्मर्षि है इसलिए हमको ब्रह्मर्षि होना चाहिए। छात्र बल ब्रह्म बल के बराबर नहीं है बहुत बार हार गए अंत में सोचा कि हम तो ब्रह्म पदवी जरूर ग्रहण करें इसलिए ब्रह्मवादियों के जितने गुण हैं वो सब लाने की चेष्टा करने किंतु प्रत्येक बार वहां जाते और उनको राजर्षि कह करके संबोधन राजर्षि ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं की। अंत में दोनों में घोर विवाद हुआ साधु संघ बड़ा है और सब तपस्या इत्यादि बल बहुत तपस्या हुई। तब वो शेष नाग के पास में गए शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए थे ब्रह्मांड को उन्होंने पूछा ये साधु संग बड़ा है न तपस्या का बल बड़ा है। उन्होंने कहा आप लोग ऐसा कीजिए विश्वामित्र को पहले कहा जरा पृथ्वी को आप धारण कर लीजिए तो मैं जरा सांस लेकर विश्राम करके मैं कुछ बात करूंगा थोड़ी देर विश्राम करो। तो उन्होंने पृथ्वी का भार जब उनके ऊपर में दिया एकदम रसातल में जाने लगी पृथ्वी और मैं नहीं सकूंगा, इस प्रकार से रोने चिल्लाने लगे। उन्होंने ले लिया पुत्री को, भी वशिष्ठ जी को कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं साधु संग जितना जीवन में किया है उसमें एक क्षण का जो आधा क्षण का जो फल है इस पर लग जाए और सब पृथ्वी खड़ी हो जाए, बस एकदम पृथ्वी उस पर स्थिर हो। तो फिर उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी ने इसे आप अब बतलाइए, आप तो विश्राम ले चुके तो हमारा उत्तर तो हो गया, तो कैसे तो आप पृथ्वी तपस्या के बल से पृथ्वी को धारण नहीं कर सके, और उन्होंने सत्संग के बल पर इसको धारण किया, इसलिए सत्संग बढ़ा। ये तो ऊपर से दिखाया गया, जितने भी आज तक कृष्ण को पाने वाले लोग हुए हैं वो सब साधु संघ के महिमा पर हुए हैं, कोई भी तपस्या के बल पर, दान के बल पर और दूसरे चीजों के बदौलत नहीं हुआ। इसी के लिए सनातन गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के भक्त उपाख्यान से एक श्लोक बतला है, रहो बने तब तपसा में जाए। आप लोग सभी लोग इसको श्लोकों को विशेष करके इस श्लोक को याद रखें, रहो बने तब तपसा में जाती न चेत ज्ञान निर्वाप नाम निहारवा न छंद सा नहीं तो जलाग में छूट गई बिना मत पाद योगी से कर जत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य तथा विहार निषेध मानो अनुदिनम मुमुक्षोर्भति सती जाति वासुदेव। प्रभुगणे तत्ता तपसा न जाति, भट्ट महाराज जी प्रभुगण राजा से ये कह रहे हैं। भट्ट महाराज अपने ये तीसरे जन्म में बतला, पहले जन्म में नहीं, पहले जन्म में भजन करने गए थे युवावस्था में और एक सात्विक दया करने जाकर उनके तीन जन्म नष्ट हो गए, तीन जन्म से उनका लग। सात्विक दया माने क्या, किसी प्राणी के ऊपर में इस फूल शरीर की रक्षा करने के लिए जो दया होती है उसको कहते हैं सात्विक दया। अपना लाभ नहीं होने पर हिरण का बच्चा डूब रहा था पानी में मर रहा था, उसको बचाने गए अपना भजन छोड़ करके, जिस प्रकार से शिक्षा के लिए अपने गुरुदेव जी का उपदेश छोड़ करके नरोत्तम ठाकुर जी पानी पीने गए, ये भी भजन छोड़ करके उसको बचाने के लिए गए। उनका कर्तव्य क्या था उस समय, उनका कर्तव्य वही था जो उन्होंने किया, क्यों उनका अधिकार ही था और इसीलिए वो तीन जन्म के नष्ट हुए। ज्योति उसके बदले में कोई ब्रजभाव वाले कोई रसिक भक्त होते और ऐसे सदगुरु पाए होते तो वो आंख बंद करके लीला चिंतन करते हुए हरिनाम करते उधर देखते ही नहीं, दृष्टि कब किसकी कहां पर पड़ती है। कभी कभी आदमी चलता है बाजार में तो वो कहीं नहीं देखता, अपने गंतव्य स्थल की तरफ में इधर उधर नहीं देखता, चला जाता है सिर नीचा किया, उसको कुछ पता नहीं दुकान में कहाँ का क्या है। और कुछ लोग हैं वो इसीलिए बाजार में आते हैं जो दोनों तरफ में क्या हो रहा है, पैर के नीचे सांप है बिच्छू है वो नहीं देखते, ऊंचा नीचा है नहीं वो लोग नहीं देखते, पास में गैया भी है उनको उन्हें सब कुछ दिखता है पास का कुछ नहीं दी। तो ऐसे लोग दोनों दुकान के तरफ में वो चीजें देखते हुए चले जाए, और वैसे भक्त होंगे वो कहीं नहीं उनकी नजर जाएगी, तो इनकी नजर अभी वहीं तक है, उनका क्या कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी प्यासा है पानी मांग रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य, तो तुमको प्यासा लग रहा है और भगवान की सेवा से तुमको वही बड़ा लग रहा है तो करो, लाख जन्म लगेंगे मिलेंगे भगवान हो सकता है, किंतु लाख कोटि जन्म मिलेंगे और हो भी सकता है कि नहीं भी मिल जाए, किंतु तुम देख रहे हो कि प्यासा है और पानी नहीं पिलाते तो तुमको अभी दंड भी भोगना पड़ सकता है। देखने में यदि हो तब तो तक, इसलिए ये अधिकार सबका एक नहीं है। तो ये उसकी रक्षा की और अंत में हिरणी के आसक्त में आसक्त होकर के तीन जन्म इनके नष्ट हो गए। दूसरे जन्म में ये हरणी बन, हिरण बन, पुराश्रम में रहते थे जहां पर पहले रात भजन किया था, गंगा और गंडकी के संगम स्थल पर, और वही भजन करने लगे। किसी हिरण से नहीं मिलते, हिरणियों से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, साधु संग में रहते और वहीं पर जो कुछ मिल जाता खा लेते, गंगा में पा लेते, समय से चले गए। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म, वहां पर उन्हें किसी से नहीं बोला, अनाशक्त बने रहे, पढ़े लिखे भी नहीं। एक समय में डाकू पकड़ ले गए और भद्रकाली पर इनको बलि देने की चेष्टा की, तो भद्रकाली ने उन असुरों को मार करके खत्म कर दिया। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप ऐसे अपने को आच्छन्न भूमि में मत रखिए, नहीं तो बहुत से लोगों का अपकार हो जाता। एक दिन ये फिर अपने खेत पर मेरे पर बैठे थे, प्रभुगण राजा, उसका नाम ही था रहू, बड़ा धार्मिक राजा था, पालकी पर चढ़ करके कपिल देव जी के आश्रम में जा रहा था कुछ प्रश्न आत्म विषय करने के लिए, आत्मा और अनात्मा के संबंध में। रास्ते में उसका एक पालकी का कहार बीमार हो गया, उन्होंने हेड ऑफ वो कहारों को कहा, एक और आदमी को पकड़ लिया, उसने जाकर के देखा एक खेत के मेड़ पर एक मुस्तंग मोटा छोटा युवक बैठा है, वो भी नंग धड़ में जैसा, बस उसको पकड़ करके ले आए, लेकर के पालकी में लगा दिया। पालकी चलने लगी तो हिलने लगी, क्योंकि चींटियों को और सब चीज को देख करके चल रहे थे, ये कहीं कोई चीज मर न जाए, इसलिए उनके पैरों में पैर नहीं मिल रहे थे, अभी जानते भी नहीं थे पालकी चलाने। जब पालकी हिलने लगी तो राजा ने डांटा, अरे क्या तुम बहुत दुर्बल है, चल नहीं सकता, बहुत मोटा छोटा है, तो जानता नहीं है मैं राजा हूं देश का, मैं तुम्हारा दंड कर देने वाला हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से दंड दूंगा। इसी तरह से बहुत प्रकार की बातें कह रहे थे, तो अंत में इनके मुख से निकल गया कौन पालकी ढोने वाला और कौन राजा, कौन राजा दंड देने वाला और कौन दंड भोगने वाला, कौन शासन करने वाला। दो चार बातें ऐसे निकलते ही राजा ने कहा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं,
कौन दुबले कौन मोटे,
पालकी से कूद पड़ा, बोले जी महाराज आप कौन हैं, आप तो साधारण मालूम नहीं पड़ते हैं, आप तो धूलि आच्छादित अग्नि जैसे हैं, आप कपिल देव तो नहीं, आप कोई सनक सनंदन सनातन में से तो कोई नहीं, आप कौन से हैं, आप अंगिरा नारद या इन लोगों में से तो कोई नहीं, आप कौन से जो इतने बड़ी बात कर रहे हैं। मैं तो इसी के संदेह में पड़ा हुआ जा रहा था कपिल देव जी के आश्रम, तो उनको दया आ गई, आज तक किसी से सीधी बात नहीं बोलते थे, किसी से भी सीधी बात नहीं, आज पहली बार सीधी बात हुई, देखो तुम्हारे पूर्वजों में भरत जी का नाम सुना है, जिनके नाम के ऊपर में भारतवर्ष नाम पड़ा है, हम महाराज हमारे वंश में बड़े प्रतापी राजा हो गए, उनको कौन नहीं जाने, वही मैं, वही आप हैं, कैसे उनका तो बहुत दिन हो गया परलोक चले गए, तो वही तो बतलाता हूं, एक हरणी के मुंह से मैं हरणी होकर के जन्मा था, आदि जन्म में ब्राह्मण के रूप में आया। आप ये जो कह रहे हैं ये कौन मोटा तुम? मोटा तुम है, मैं दुबला हूं, पार्टी नहीं चला सकती, मैं राजा हूं, ये सब मोह की बात है। आत्मा का एक भी गुण नहीं है। अरे महाराज मैं तो इसी ज्ञान के लिए आपके पास में जा रहा हूं, तो वो आत्मा के संबंध में जानने के लिए जा रहा, आत्मा क्या चीज है आप कुछ इसके संबंध में बतलाए। हमारा एक प्रश्न है, आपने कहा अभी कि पानी में आत्मा भोक्ता नहीं है, कोई दुख का अनुभव करने वाला ये आत्मा नहीं है, तो दुख इन जीवों को कैसे होता है? कांटा यदि शरीर में लगा दिया जाए अनुभूति होती है कि नहीं होती है? ये तो होती है। आप कहते हैं कि इसकी अनुभूति नहीं, ये कैसे मेरी समझ में नहीं आता है? यदि कहिए इन सबसे अतिरिक्त है आत्मा, तो मान लिया कि अतिरिक्त है, किंतु कुछ भी संशय रह जाता है। जैसे आग के ऊपर में बटलोही चढ़ाई और बटलोही ने अंदर में पानी गर्म कर दिया, पानी खौलने लगा,